الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج ہم انشاءاللہ سورہ حج سے سٹارٹ کرتے ہیں آگے یہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن کی 22 نمبر پہ سورت ہے 22 سورت اور نزول کے اعتبار سے آتا ہے کہ یہ 103 نمبر پہ نازل ہوئی سورت یہ بھی مدنی سورت ہے اور اسے سورہ حج حج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی خود لوگوں پر جو اس حج کی فرضیت ہے اس کا اعلان کروایا تھا اور یہ آگے چل کے انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے آگے 29 تک انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا اس میں ٹوٹل 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں اس سورت کے اندر اور ویسے تو نارملی تو یہ دیکھنے میں ہم پیچھے چل رہا تھا کہ مکی سورتوں میں موسٹلی فار دا موسٹ پارٹ عقائد کا زیادہ ایمفسس نظر آتا ہے اور مدنی سورتوں میں دیکھا جائے تو مسائل اور احکامات کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ مدنی سورتوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس سورت میں کیونکہ یہ بہت آخر کی سورتوں میں سے 103 نمبر پہ جیسے آ رہا ہے کہ آئی ہے تقریباً تو اس میں دونوں کو ہی ایک دفعہ ریوائز کیا گیا ہے بیسکلی اور اس میں دونوں مضامین نظر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ہجرت جہاد حج قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں اور اس میں عقیدہ ہے جو توحید ہے اور وعید ڈرانا اور نذیر لوگوں کو ڈرانا بعث و جزا جنت دوزخ اور قیامت کے مناظر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی کچھ سامنے آئی ہیں تو اس میں دونوں طرح کے کچھ نظر آئیں گے ہمیں مضامین اور سٹارٹ میں ہی بالکل اگر ہم دیکھیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سب سے پہلے اللہ نے قیامت سے ڈرایا ظاہر ہے لوگوں کو کہ یہ بہت ہی شیء عظیم یہ بہت ہی بڑا ایک دھچکا ہوگا اور اس کے بارے میں آگے یہ جب ہوگا تو اس دن لوگ دیکھیں گے جو جتنے جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی جو دودھ پلانے والی ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا وہ دے ول لوز دیئر چائلڈس ایسا اتنا ایک زلزلہ تساعتی شیء عظیم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ سکارا وطن ناسا سکارا وما ہوں بھی سکارا کہ یہ لوگ جیسے ٹن ہیں ریلکٹپسی ہیں یا نشے میں دھت ہیں اور ہوش میں نہیں ہیں اپنے یہ ایسے گھوم رہے ہوں گے بالکل مدہوشی کی حالت میں جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ کبھی دیکھنے کسی بار ملکوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی بندہ پی لے اور ٹن ہو اور اس جو کیپیسٹی میں ہوتا ہے جب اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہتا تو یہ ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے سب سکارا اس کیفیت میں ہیں اور آگے چل کے غور کریں گے اگر تو اس میں تقریباً 9 کے قریب پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر ایک خاص طور سے اہمیت نظر آتی ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو انسان کی تخلیق ہے آیت نمبر 5 سے ہی اگر دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث آپ اگر کوئی ریب کہتے ہیں شک کو کہ تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ یہ بہت لمبی آیت اور اس کے اندر باقاعدہ پورے پیٹرن کے ساتھ سب سے پہلے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اور پھر بالواسطہ اس کے تھرو جو انسانوں کو ایک ہیومن تخلیق کی منی کے فارم میں اس سے پیدا کیا اور پھر اس کو نطفہ بنایا اور پھر اس سے آگے جا کے وہ ایک خون اور پھر غذا سے پیدا کیا اور اس مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا جو ایک سیکرٹ ہے کہ یہ کیسے مٹی سے کیونکہ آگے چل کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی جو نطفے کو آگے جب پھر خون اور پھر ایک سارٹ آف بوٹی ایک فارم میں लंप सॉर्ट ऑफ फॉर्म में बनाया, और फिर उससे कैसे आगे फिफ्थ स्टेज में हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो पैदा होता है और फिर बहुत कमज़ोर होता है, और फिर सिक्स स्टेज में जाके वो जवान होता है। इसका जिक्र ख़ास तौर से किया, वो अकल और शऊर और जो उसकी लॉजिक और उसका सेंस है वो पाता है, और फिर सातवें मरहले में वो जवानी ही में कभी इंतकाल कर जाता है या फिर वो बुढ़ापे में जाके मरता है। तो इससे जो लोग दूसरी टाइम दोबारा उठाए जाने और इसके बारे में डाउट में होते हैं, हाउ कैन दे स्टिल बी इन द डाउट व्हेन द साइन इज सो क्लियर, कि इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट एक मिट्टी है, वही उससे वो मनी, फिर नुतफा, फिर एक बोटी लम्प, फिर खून की उससे गज़ा, और फिर कैसे वो एक जिंदा ह्यूमन फॉर्म में पैदा होता है, और फिर फाइनली आगे चल के बहुत प्लानिंग करता है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन किसी वक्त को तो किसी को पता नहीं, वो किसी का भी वक्त कभी भी आ जाए, और एंड में जाके वो मिट्टी में मिलता है, एंड देन फाइनली वंस अगेन वो दोबारा मिट्टी बन जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल जो चल रहा है, इसके अंदर इतनी बड़ी एक निशानी है, तो ये एक ख़ास पॉइंट नज़र आता है। और फिर आगे और हम देखते हैं सेकंड एक और चीज़ जो सूरत में, वमिन अन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, ये आयत नंबर 8 से ऑनवर्ड्स के ये लोग वाज़े गुमराही पर हैं, इन्हें यानी कोई इल्म नहीं है, कोई हिदायत नहीं है, इनके पास कोई किताब, कोई मुनीर नहीं है, कोई रोशन किताब, लेकिन बहरहाल ये फिर भी क्यों हक को तस्लीम नहीं करते। और बहरहाल खैर इनके बारे में ये एक पॉइंट हमें नज़र आता है, और फिर इसके आगे हम चलते हैं तो थर्ड नंबर के ऊपर, वर्स आयत नंबर यानी वर्स 17 के अंदर थर्ड जो टॉपिक हमें नज़र आता है, ये डिफरेंट मज़ाहिब को एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म में, इन लजीना आमनु वल्लजीना हादू वस्साबीन वन्नसारा वल्मजूस वल्लजीना अशरकू इन अल्लाह यफसिलु बैनहुम यौमल क़ियामा इला आखिर आयत, के ये डिफरेंट जो मज़ाहिब हैं इनका बाकायदा नाम लेके, सबसे पहले ईमान वालों का यानी कि मुसलमान का, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, फिर हादू यानी कि ज्यूज़ जो मूसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स हैं, फिर साबीन हज़रत ईसा अलैहि सलाम के उम्मतियों को आगे नसारा कहा, और साबी वो लोग होते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम के ज़माने में होते थे, जो उन्हें सितारों और वो की वो पूजा वगैरह करते थे। तो ये डिफरेंट है मजूसियों से, मजूसी और अदर वंस जो सूरज और चांद और आग की बेसिकली दे वर्शिप फायर, तो ये लोग सिर्फ स्टार्स को वर्शिप करते थे, सूरज और आग को गालबन नहीं करते थे, इनके बारे में जो आता है किताबों में, तो ये उस ज़माने में होते थे, इनका बाकायदा जिक्र आया, फिर यही मजूसियों का, और फिर मुशरकीन का कि वल्लज़ीन अशरकू वलमजूस वल्लज़ीन अशरकू इन अल्लाह यफसिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, के इन में से जो ये ज़्यादातर इनके सामने वाज़े निशानियों के बावजूद, ये जो ऊपर पांच मज़ाहिब का ज़िक्र आया, ये सब के सब एक शैतानी फ़िरका है और ये बातिल फ़िरका है, और रहमान का जो फ़िरका है वो सिर्फ़ एक ही है, वो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला इस सब चीज़ों पर गवाह है, और अल्लाह क़यामत के दिन इसका फ़ैसला फरमा देंगे। और फिर आगे थोड़ा चलें तो हमें एक और पॉइंट जो अल्लाह ताला के जो महारिम है, यानी कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के ही हुक्म से बैतुल्ला, क्योंकि काबे मुबारक जो है उसकी तामीर फरमाई थी, और फिर इसके बाद जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर हज का ऐलान किया था। तो यहाँ अगर गौर करें तो आयत नंबर 30 से ज़ालिका मा मन युअज़्ज़िमु हुरमात अल्लाह फ़हुवा ख़ैरुल लहू इंद रब्बी व अहिल्लत लकुम अल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम इला आखिर आयत, इनके बारे में ख़ास तौर से एक ज़िक्र आया, यही जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज और जो शायर हज होते हैं, जैसे कहा इन सफ़ा वल मरवा तमिन शायर अल्लाह, सफ़ा और मरवा के जो मकाम आते हैं वो अल्लाह के शायर हैं, उनकी मुनासबत से ये भी बता दिया कि जो अल्लाह के महारिम, इनकी तज़ीम ईमान की अलामत है, जो लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, इनकी तज़ीम करेंगे, वो लोग मोमिन होंगे, जो अल्लाह के शायर जितने भी निशानियाँ हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि आयत नंबर 35 में एक फिफ्थ पॉइंट हमें एक मोमिनों की अलामत नज़र आती हैं, पहले इनका सब फिर मज़ाहिब का बताया, फिर अल्लाह की जो चोज़न प्लेसेस हैं उनकी तज़ीम का जिक्र, और फिर ये देखते हैं कि मोमिनों की आयत नंबर 35 से अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वल मुकीमिस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, ये जो अल्लाह के हकीकी मोमिन होते हैं, ये सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो ये अल्लाह के खौफ से इनके दिलों में होता है, और ये अगर इन पे कोई मसाइब, कोई बुराई, कोई आजमाइश आती है, इस पे सब्र करते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी करते हैं और अपना माल वगैरह जो होता है वो नेक मसारिफ़ में ख़र्च करते हैं। और इसी से आगे एक आध आयत देखते हैं, आयत नंबर 37 के ऊपर जाके, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत्तक्वा इला आखिरिल आयत, के जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो गोश्त होता है, जो हम बकरा या गाय या कोई ऊँट या कोई शीप, कोई भेड़ दुम्बा वगैरह ज़बह करता है और उसका गोश्त वो समझता है, देखो मैंने तो 50,000 का लिया है, मैंने 1 लाख का बकरा लिया है भाई, या मैंने 10 लाख की गायें मेरी थी, 20 लाख की थी, जो भी आजकल तो करोड़ों में सुना जाता है ये प्रॉब्लम, लेकिन उसका जो गोश्त होता है वो अल्लाह को नहीं है ना लुहूमुहा, उसका गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता, और ना ही उसका जो खून जो निकलता है उसकी बॉडी से बाहर जब हम ईद पर उसको ज़बह करते हैं मिसाल के तौर पर, अल्लाह को तो सिर्फ़ तकवा पहुँचता है। और तकवा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये अपने हाथ के इशारे से अपनी उंगली को अपने दिल की तरफ, अपने हार्ट की तरफ पॉइंट करते हुए फरमाया कि अत्तकवा हा हुना, अत्तकवा हा हुना, अत्तकवा हा हुना, 3 मरतबा फरमाया, जिसका मतलब है कि तकवा दिल में होता है इंसान के, वो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कुर्बानी कितनी महंगी थी या गोश्त कितना आला था या वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर इसके बाद आयत नंबर 39 पे हम देखें तो एक और टॉपिक हमें जिहाद के हवाले से यहाँ पे नज़र आता है, उज़िन लिल्लज़ीन यक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर, के जो अगर इस हालत में कि कोई जुल्म हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादती हो रही है या हक़ के ऊपर कोई जंग चल रही है, तो उसमें साथ देना भी उसके लिए ज़रूरी है, हाँ उसकी अपनी शराइत अपनी जगह है और ज़ाहिर है उनको फॉलो करना हर सूरत में बाकी रहेगा। मिसाल के तौर पे कोई जंग की हालत में भी कोई औरतों को मारना, बच्चों को मारना, मज़लूमों को, बूढ़ों को, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं होता। ये तो आजकल के ज़माने में जो हैवी मशीनरी और वेपनरी और उसके ज़रिए 20-20,000 टन बॉम्ब्स इधर उधर जाके गिरते हैं और उनसे मज़लूम बच्चे, कोई बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं, कोई गुनाह किया होता, कोई बुराई किसी के साथ, कोई ज़्यादती, वो भी मर जाते हैं उसमें, तो ये तो, लेकिन उस ज़माने में बहरहाल नबी सलाम ने तो ये ऑर्डर दिया था कि इसमें इतनी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हाँ हक़ पे कायम रहना भी उसी हिसाब से ज़रूरी है। और तो इनकी इसकी तरगीब इन ख़ास तौर से दी गई कि अगर कोई ऐसा जुल्म चल रहा है, ज़्यादती चल रही है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, खामोश ना बैठे रहो, और इसीलिए इसकी इजाज़त दी कि उससे लड़ाई भी जायज़ होगी। जो मुतअद्दिद सहाबा और ताबईन वगैरह हैं उनके ओपिनियंस अगर हम बुक्स वगैरह में फ़ॉलो करें तो वो ये फरमाते हैं कि तकरीबन 70 आयात में जब कोई लड़ाई चलती है किसी कुफार से, किसी से भी बात चली के कुछ कोई वो जुल्म कर रहा है, इवन सुलह हुदैबिया में मुसलमानों की बज़ाहिर एक शिकस्त नज़र आई उस अग्रीमेंट के फॉर्म में, लेकिन अल्लाह ने उसे कहा इन्ना फतहना लक फतहा मुबीना, दे उस ऐसी सूरतों में देखते हैं 70 के करीब ताबईन और सहाबा फरमा रहे हैं बड़े बड़े के किताबों में जो लिखा है उनके बारे में कि 70 के मकाम में अल्लाह ने हाथ रोक लेने का की तलकीन की थी। उसके बाद ये पहली आयत है, यह आयत नंबर 39 जो पढ़ी गई है, उज़िना लिल्लज़ीन, अब अल्लाह ने इजाज़त दी है किताल की, यानी कि मारने की या कत्ल करने की, ये सिर्फ 70 आयात हाथ रोक लेने के बाद, और फिर जाके एक मरतबा फरमाया इसके बाद कि हाँ अगर कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो इसी के साथ फिर इसमें इसकी हिकमत भी बयान कर दी कि अगर अल्लाह ऐसा ना करें तो ज़ाहिर है फिर जुल्म बढ़ेगा और मुसलमानों को परेशानी हो सकती है। और जैसे आजकल के ज़माने में भी देख रहे हैं जगह जगह दोनों तरह के हक और बातिल की लड़ाई हर ज़माने में हर दौर में चलती रही है, और क़यामत के आने तक कोई ना कोई फ़िरका इस तरफ और कोई उस तरफ और लड़ने झड़ने में ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और लास्ट पॉइंट फिर जाते जाके देखें कि सेकंड लास्ट पॉइंट 8 नंबर पे के वर्स नंबर 49 के ऊपर जाके जो मकसद बेअसत है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनका मकसद जो है वो दावत पहुंचाना है, आगे दीन की दावत देना है। कुल या अय्युन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ़ एक वाज़े डराने वाला हूँ, ये बताना इनका मकसद है। और वो इसी में ज़ाहिर है ये तो उन्होंने वाकई उसका हक भी अदा कर दिया, और फिर दूसरी तरफ अल्लाह का दस्तूर ये रहा है कि वो शयातीन के जो पैदा कर दे जो वसवसे और शुभालात शुभात वगैरह जो होते हैं उसके कन्फ्यूजन्स होते हैं उनका इजाला करता रहे जो लोगों के दिमागों में या दिलों में लोग ये डालता है शैतान। तो इसलिए ख़ास तौर से फरमाया वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन वला नबीन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा शैतान फ़ी उमनियतिही के जो इनके दिमागों में दिलों में जो शैतान वसवसे डालते हैं और क्वेश्चन का और ये दौर और इस तरह का चलता है तो इनके बारे में ख़ास तौर से अल्लाह सुबहाना तआला ने फरमाया कि लिए आगे अगली आयत में भी देखते हैं लिया जला मा युल्क शैतान फितनतन लिल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन जिनके दिलों में मरज़ होता है आखिर आयत के जिनके दिलों में मरज़ होता है और उनको बहकाना आसान होता है उन्हें ये ईज़िली बहका देता है। और लास्ट बिल्कुल एक नाइन्थ पॉइंट भी हमें इस सूरत में जो मिलता है वो जाके हम देखते हैं आयत नंबर 77 के ऊपर, वो है एक तशरी तौर पे अल्लाह सुबहाना व तआला इस सूरत की सॉर्ट ऑफ इख्तिताम इस तरह से फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू वरकऊ वसजुदू वअबुदू रब्बकुम फफअलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून के ये जो अहले ईमान हैं जो ये हैं इन्हें जिहाद फ़ी सबील नमाज जहाद जिहाद नमाज ज़कात वगैरह का हुक्म दिया जा रहा है और इन्हें इन्हीं अहकाम पर ये अहकाम जो इन्हें दिए जा रहे हैं इन सारे जो शरई मसाइल या करने के काम हैं उनके ऊपर इनके ऊपर जाके अल्लाह इसे सुबहाना तआला ने बिल्कुल लास्ट एंड में देख रहे हैं तो फ़कीम उसलात अबात ज़क़ात वातसमु बिल्लाही व मौला कुम फ़न अमल मौला व नमन नसीर। तो वाकई अल्लाह ही सुबहाना व तआला फ़न अमल मौला व नमन नसीर है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह अगर बिल्कुल तकरीबन एंड होती है तो हम इंशाल्लाह सूरह मोमिनून को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये ऑर्डर के एतबार से 23rd नंबर पे सूरत है और नज़ूल के एतबार से ये 74th नंबर पे जाके सूरत बनती है। नाजिल 74 नंबर पे हुई थी ये सूरत गालबन और इसी से 18th पारे की बिल्कुल ये बिगिनिंग है। और इस सूरत के बारे में भी ये मक्की सूरत है ये आता है और इसमें तो कोई 118 118 आयात हैं और 6 रुकू हैं 6 रुकूज़। और इसमें ज़ाहिर है बिल्कुल सूरत के शुरू में हम देखते हैं तो मोमिनून का जिक्र आ रहा है जो सही मोमिन होते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़्वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। ख़ास इनकी जो निशानियाँ मोमिनीन की हैं वो बयान करते हुए अल्लाह ने ये बिल्कुल पहली आयत से शुरू हों और 11th नंबर पर आयत तक इसकी ये तकरीबन 9 के करीब ऐसी निशानियाँ ये 9 के करीब आयत हैं एक से यहाँ से ऑनवर्ड्स और तकरीबन 7 ऐसी इसमें सिफात अगर हम गौर करते हैं ख़ास तौर से देखें अफलहल मोमिनून फरमाया कि कामयाब हैं वो अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अपनी नमाज़ों में जैसे फरमा रहे हैं कि ख़ाशिऊन खुशू खुशू से पढ़ते हैं अपनी नमाज। इस पर ज़ाहिर है बात लंबी करने का तो इस वक्त टाइम नहीं है तो हम इंशाल्लाह आइंदा कभी किसी दर्स में इसको रखेंगे। और बहरहाल जो की पॉइंट्स अगर हम गौर करें साथ जो इनके बारे में बयान किया है वो ये कि ये सच्चा ईमान जो कि इनको दिया है वो निफाक से पाक हो और ये नमाज़ में ज़ाहिर है अफलाल मोमिनून लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन ये नमाज में खुशू जैसे इस आयत में दूसरी आयत में फरमाया यानी अल्लाह के सामने बिल्कुल आजी से खड़े होते हैं और फिर इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं इसको कहते हैं सारे तादील अरकान जो कहते हैं बड़े बड़े फुकहा हज़रात। जैसे कोई मिसाल के तौर पर कोई बंदा एक बंदा एक देहाती था वो नमाज़ पढ़ रहा था बहुत तेज़ी से तो उसने अल्लाह अकबर किया आगे फटाफट वो रुकू में गया और पूरी तरह बेंड नहीं हुआ एक बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल उसका ज़मीन के साथ नहीं बना लेकिन बहरहाल वो तेज़ी से पढ़ता था। वो वापस जब नमाज से फारिग हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फिर नमाज़ पढ़ो वो गया उसने फिर पढ़ी वापस आया फिर उन्होंने कहा फिर नमाज़ पढ़ो फिर वो आ गया। बहरहाल ये गालबन जो रिवायत में आता है कि 3 मरतबा ऐसा हुआ उसके बाद उन्होंने फिर उसे बताया और ख़ास तौर से कहा कि तादील अरकान जो होता है नमाज की जो अरकान रुकन होता है जैसे रुकू है इस मिसाल के तौर पे उनके केस में तो इन्हें सही तरह से अदा करना चाहिए तो उसका मतलब यही था कि बैंड तरीके से हो रुको स्टे करो ऐसे जल्दबाजी में नमाज ना पढ़ो ये खुशू में है नमाज की इन चीज़ों की सब चीज़ों को केयरफुल रहना और इसे सुन्नत के मुताबिक नमाज को सीखना और उसको उसी तरह से पढ़ना ये भी असल नमाज का फ़ायदा देती है और ये खुशू में आती हैं चीज़ें। फिर ये कि ये लग बातों से एराज करते हैं, यानी फजूल बातें हैं, अगर कोई नई समझ आ रही किसी को तो ठीक है, उसे छोड़ के वो आगे निकल जाते हैं, दे मूव ऑन, और वो कामिल तरीके से ज़कात की अदायगी करते हैं, यानी वो हुकूकुल्ला और हुकूकुल इबाद दोनों का एक बैलेंस फॉर्म में सबका ख्याल रखते हैं, फिर वो जिना और फहश कामों से अपने आप को बचाते हैं, यानी जो बुराई आजकल के ज़माने में, तो ये जिना का दौर दौर है, और आसपास आगे पीछे कहाँ नज़र नहीं आते ये मामला, तो बहरहाल अल्लाह इनसे बचाए, इनसे अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ने कहा जो बस इल्ला मा मलकत अयमानुहुम, जो उनके हलाल तरीके से अल्लाह ने उनके लिए जायज़ किया, उसके अलावा ये हराम कामों में नहीं पड़ते, और वो अमानतों की हिफाजत करते हैं, वादे पूरे करते हैं। फिर नमाज की हिफाजत का दोबारा जाके पता चलता है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यानी कि उसके वक्त का, उसके अरकान का, उसकी हर चीज़ का ख्याल, ख़ास तौर से ख्याल रखते हैं, कि जी अल्लाह ने कहा इन्न सलात कानत अल मुमिनीन किताबा मौकूता, इसे वक्त पर हमने अगर फ़र्ज़ किया है तो फिर उसको उसी वक्त में अदा करते हैं, कज़ा बाद में करके बाद में पढ़ने का तो ज़ाहिर है वो अजर नहीं होगा, बहरहाल कज़ा तो फिर भी वाजिब होगी, लेकिन इन एनी केस वो अजर तो ज़ाहिर है, जो किताबा मौकूता जो उसके वक्त में करने का सवाब होगा वो उस लेवल का तो नहीं मिलेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी कभी, ये क्योंकि एक बहुत डिटेल टॉपिक है, अभी हम लेट्स मूव ऑन के जो इंसानी तख्लीक के इसमें नेक्स्ट टॉपिक एक नज़र आता है, आयत नंबर 12 से हम देखें, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, पीछे पूरी इसकी जो तकवीनी मराइल थे उसको अल्लाह सुबहाना तआला ने किया था डिस्कस एग्जैक्टली इसी तरह, और यहाँ दोबारा इसको एक डिफरेंट फॉर्म में, पहले सुलाल वहाँ पे अलकतिन मिन मुज़गतिन, वो जो लोथड़े का और लम्प का और उसका जिक्र आता था, यहाँ पे अल्लाह ने कैटेगोरिकली कहा कि इसम सुलालम मिन तीन, मिट्टी के उस सुलाले से एक एटम से बनाया सॉर्ट ऑफ कह लें, सुम्मा जालनाउल नुतफतम मिन करारे मकीन, फिर उसे एक ऐसा अपने नुतफा एक वो बनाया कि वो करारे मकीन, यानी वो जाके उसको आज की साइंस कहती है, यानी इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी रिसर्च है मेटर्निटी और इसके ऊपर के किस तरह से वही जाके कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जाके वो हमल यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती, और फिर वही कभी कभार जाके लोग प्रिकॉशनर यूज़ करके भी बच नहीं पाते, तो ये तो एक मेडिकल मिरेकल है इन इट सेल्फ, ये इसीलिए अल्लाह ने बार बार इसको दोहराने की, इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ने हमें ये शायद गालबन इसीलिए रिपीट किया अल्लाह ने, और फिर ये मुख्तलिफ मराइल को जो बयान किया है इनके बारे में, तो जाहिर है जो लेटेस्ट साइंस और जो मेडिकल तहकीक है वो सब भी अब इस पर मुत्तफिक है और इन फैक्ट्स के ऊपर कायम है, कि ये जो अल्लाह ने यहाँ पे जैसे तकवीनी दलाइल बताए हैं, ये इसी तरह से बिल्कुल इसके ऊपर सब चीज़ें वर्ड फॉर वर्ड, जैसे कि आयत नंबर 14 को गौर करें, सुम्मा खलकना नुतफतन अलगतम खलकना अलगतम मुज़गतम फला खलकना मुज़गत इज़ामन फकसवना इज़ामन लहमन सुम्मान शाना, बिल्कुल एक एक जो लेटेस्ट जो आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन्स बताती हैं वो मेडिकल मिरेकल कुरान ने हमें यहाँ पे दिखा दिया। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो तकवीनी दलाइल हैं कि सातों आसमानों को कैसे अल्लाह ने, जो अजीब मखलूकात हैं इनके बारे में, और फिर बारिश को अल्लाह जो कैसे बरसाता है, और जो अक्सर ये रेपिटेशन आयात आती हैं ज़ाहिर है अल्लाह की निशानियों को दिखाने के लिए और मोमिनों को खुशखबरियाँ देने के लिए, और फिर जो किस तरह से मुख्तलिफ गल्ला जो होता है और वो जो फल उगते हैं ज़मीन से, किस तरह से एक बीज डाला और वो बड़ा दरख्त बन गया, या जो जानवर वगैरह हमारे खाने पीने के लिए मीट और सप्लाई करते हैं, चिकन है, बीफ है, मटन वगैरह, ये चीज़ों इनके अपने बेनिफिट्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं ज़ाहिर है, और इन सब चीज़ों को बयान करने के बाद फिर नेक्स्ट एक अल्लाह ने जो इस सूरत के अंदर एम्फसिस किया वो बहुत लंबा, 23rd आयत से ऑनवर्ड्स तकरीबन 50 आयत, आयत नंबर 50 तक जाके, ये आयत नंबर 23 से ही अगर हम देखें, वलकद अरसलना नूहन इला कौमी फ़क़ाला या कौम इबदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु फ़अफ़ला तत्तकून, के ये क्यों नहीं डरते अल्लाह से, तो इन अम्बिया के किस्से अल्लाह ने बयान किए दोबारा एक दफ़ा बताने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए, नूह अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, और इन सब के अल्लाह ने ये बयान किया और ये बताया कि तमाम के तमाम अम्बिया जो हैं उनकी एक ही दावत थी, और वो थी वहदानियत की, वन सुपीरियर, एक अल्लाह, वन एंड ओनली दी वन, द ऑल माइटी, जिसके बारे में पीछे सूरह आल इमरान में काफ़ी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी थी बात, कि सब किताबें इस पे, इवन बाइबल हो, कोई हिंदू की बुक्स हों, सिख की हों, पीछे सारे कोटेशंस के साथ हमने इसको डिस्कस किया था कि ये सब के सब यही कहती हैं कि उन सब में एक गॉड के बारे में जो जिक्र आता है वो यही आता है कि ही इज़ द वन, ही इज़ द ओनली, एक कोई गॉड है। फिर लेकिन ये होता ये था कि इनके बाद जो ये जब ये जाते थे नबी, उनके बाद उनकी जो उम्मतें और कौमें और ये होती थी, ये फ़िरकों में कोई ये बन गया, कोई इस तरफ कोई उस तरफ, और फिर इतनी शिद्दत और इतनी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत और हेट्रेड, फिर उसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, कभी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, कभी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके बहुत सारे डिटेल्स होती हैं, कभी कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई पावर की लड़ाई हो जाती है, तो ये फिर डिफरेंट ग्रोहों में, फ़िरकों में और डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आगे जाके, ये नबियों के बाद होता है, वरना नबियों की तो सिर्फ एक ही दावत होती है। हालांकि अब मुसलमानों को अगर हम आज फॉर इंस्टेंस देख लें तो कुरान भी एक है, उनका नबी भी एक है, सब उसी एक किबले की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़े हैं, और अगर कोई एक नहीं है तो वो सिर्फ मुसलमान आपस में ख़ुद एक नहीं है, वो आपस में कभी कोई बोलियों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोई डिफरेंट एक दूसरे को तकफीरी, कोई कफर के फतवे, और फिर कोई फासिक फाजिर कहने के फतवे, और लड़ने मरने पे लगे हुए एक दूसरे के साथ, और जो ग्रेटर पिक्चर है, जो एक्चुअल मुसलमानों के साथ असल बुराई चल रही है, जो पूरी यूनिवर्सली ग्लोबली, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इसके ऊपर बहुत डिटेल में पीछे सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है। तो यहाँ हम फिर नेक्स्ट आगे फर्दर ऑन देखें एक और टॉपिक जो हमें इसमें नज़र आता है, आयत नंबर 57 से लेकर ऑनवर्ड 61 तक, इन्नल लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून वल लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, के इन्हीं जो लोग होते हैं इनकी चार नुमायाँ खसूसियात इसके अंदर इसलिए बयान की क्योंकि पीछे फ़िरकों की बात एक सॉर्ट ऑफ ज़िम्न में आई थी, कि ये जो सही मोमिन लोग होते हैं इनकी पहली सिफ़त तो ये होती है कि अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, फिर दूसरी सिफ़त यह है कि ये जो भी तकवीनी और तशरी दोनों तरह की जो आयात होती हैं उन पर ईमान रखते हैं, ये नहीं कि भाई इस आयत को माना उसको नहीं माना, इसमें हील उज्जत निकाली, ऐसा काम नहीं करते, जो भी आयात हैं उन पर हर आयत पर उसी तरह से वो ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और हक है। और तीसरी सिफ्त इनकी ये बताई कि रिया से बचते हैं और जो भी करते हैं ये वो अल्लाह के लिए खालिस करते हैं। अल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युतून मा आता कुफी कुलूबिहिम वजिलत अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लाहा साबिकून। तो इन आयतों में क्लियरली ये मुखलिस, एक तो थर्ड नंबर पे सिफ्त ये हुई कि अल्लाह के लिए खालिस काम करते हैं, उसमें रियाकारी शोबाजी दिखावा नहीं होता, और ये कि इन्हें एक एहसान की सिफ़त हासिल होती है, यानी नेक अमाल करने के बावजूद ये अल्लाह से डरते रहते हैं। ये एहसान के ऊपर इंशाल्लाह ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये असल में इसको एड्रेस किया गया जाके सूरह अनकबूत के अंदर, जिसके अंदर इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन कहा अल्लाह ने, वल्लज़ीन जाहदू फीना दोज़ हू स्ट्राइव इन अस लना दियन्ना हम सुबुलना वी मोस्ट श्योरली बट श्योरली गिव दैम द वे, हिदायत इनको हम देते हैं, इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन एंड दोज़ आर द मुहसिनीन, इनकी जिक्र वहाँ पर भी आएगा आगे चल के, वहाँ डिटेल में इंशाल्लाह इसको एड्रेस किया जाने जाएगा होपफुली, लेकिन यहाँ पर इतना समझते हैं इनकी एक सिफ जो फोर्थ बयान की मोमिनों की वो ये होती है, और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो नेक अमल अगर अल्लाह करते भी हैं, अल्लाह के लिए करते हैं खालिस हालांकि, लेकिन इन्हें फिर भी डर होता है अपने सीने में कि ये शायद कहीं ना कहीं इसमें कोई इखलास से हम खाली ना हों, या कहीं ना कहीं हमें अल्लाह के यहाँ कबूल भी होनी हो, मकबूल हो अमल, ये असल ज़रूरी बात हो है करने की, अमल जितना भी हो कम हो लेकिन इखलास से होता है तो वो मकबूल होता है, तो ये डरते रहते हैं अल्लाह से। फिर फाइनली आयत नंबर 68 पे जाके देखते हैं, अफलम यदब्बरुल कौल अम जाअहुम लम याति आबाहुम अल अव्वलीन, यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये जो सरकशी होती है, गुमराही होती है सब कुछ जानने के बाद भी, इसके तीन बड़े सॉर्ट ऑफ ये कह लें इन आयतों में कि निशानियाँ या इनके साइंस बताए गए। पहला ये है कि वो अपनी अकलों को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुरान में गौर व तदब्बुर के बग़ैर इस्तेज़ा यानी मजाक के सॉर्ट ऑफ फॉर्म में यदब्बरुल अकौल, ये एक मजाक करते हैं और मजाक के फॉर्म में उसको रद्द करने की कोशिश करते हैं। ये एक पहली इनका एक साइन बताया मुनाफ़कत की कहना चाहिए, या बहरहाल यहाँ पे इस तरह से पता नहीं कैसे इन लोगों को समझा जाए, लेकिन जो इनकी निशानी है कि हक़ पे नहीं होने की, क्योंकि पीछे मोहसिनीन का जो जिक्र आया था जो हक़ पे होते हैं उनके बारे में तो आगे चल के बात आ जाएगी, लेकिन उनका जिक्र आया तो यहाँ पे उन कहा कि वो क्योंकि वो उनमें नहीं होगा जो जिसके अंदर ये तीन साइंस होंगे। पहला यही बताया कि अकल इस्तेमाल नहीं करते अपनी और फजूल हीले बहाने करते हैं। दूसरा है कि ये महज अपनी ज़िद और इनाद की बिना पर जो है ना अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाते हैं। आज के ज़माने में देखा जाए अगर वो कोई ज़बान से आला लल्लान नहीं झुठलाता हो लेकिन उनके अगर कोई अमल को फॉलो ही नहीं कर रहा, आगे चल के आएगा वह मा आताकुम रसूल फ़खुज़ू मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसके लिए शदीदुल इक़ाब होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पे अमल नहीं कर रहा, उनके तरीके पे नहीं चल रहा। तो अल्लाह सुबहाना व तआला में इन लोगों से महफूज रखे जिनके लिए इक़ाब या अज़ाब हो, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए। लेकिन इनका जिक्र आया तो ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो वो जानते सब कुछ जानते बूझते भी हक़ को डिनाई करेंगे और उसमें ही लज्जते निकालेंगे। और तीसरा जो सबब फाइनली बताया वो ये कि क्या नबी अलैहिस्सलाम में कोई इन्हें जुनून के आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई यानी नॉन अननॉर्मल या एब नॉर्मल होने के इनको कोई आसार नज़र आ रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल जो मुनाफिकीन थे उन्होंने तो करना ही था ये। तो इसके बाद इन्होंने अल्लाह ने सुबहाना तआला ने आगे अगर हम देखते हैं फर्दर आयत नंबर 68 से ऑनवर्ड्स, अब तो 71 तक जाके इसी का टॉपिक चलता है, और अल्लाह सुबहाना तआला ने जो जुनून की निस्बत यहाँ पे एक बात यहाँ करना ज़रूरी है कि असल इनका मकसद ये जो था ये तकजीब यानी कि झूठ नहीं था, ये असली में उन्हें मजनू नहीं समझते थे, ये तो जानते थे कि ये सादिक है अमीन है ये हक़ पर है, ये तो उनको मानते थे, बल्कि उनकी बददुआ से डरते थे। इसके तो वाकयात बहुत सारे लिखे हुए आगे अम्मा पारे की सूरतों में जो उतबा और शहबा के वाकयात के वो एक डर के मारे बैठ किसी जगह पे बीच में सो गया और एंड में उसको शेर खा गया, वो बददुआ से बहरहाल वो तो उनकी इससे भी डरते थे लेकिन बहरहाल फिर भी उन्हें मानते नहीं थे। और फिर आगे कयामत का जिक्र जाहिर है यहाँ पर दोबारा आता है कि इंसान दो फिरकों में उस दिन तकसीम हो जाएगा, एक नेक लोग होंगे जो ज़ाहिर है जिनके आमाल भारी होंगे जो मुहसिनीन होंगे या मुमिनीन होंगे जिस पे सूरत शुरू हुई थी, और दूसरे वो जो बदबख्त और जो बुरे आमाल वाले और गुनहगार द सिनर्स होंगे। तो इनसे एक सवाल के फॉर्म में इनसे पूछा जाएगा उस दिन कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे, वो कहेंगे कि हम एक रोज़ या एक रोज़ से भी कम ही रहे। तो फिर उनसे पूछा जाएगा, अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाएगा कि वहाँ तो बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते हो। तो यानी अगर तुम्हारे पास कुछ अकल या फहम या कोई थोड़ा सा भी लॉजिक या कोई कॉमन सेंस होता तो तुम जान लेते कि दुनिया एक हकीर और बिल्कुल कलील सी जगह थी, तो तुमने इसकी कदर नहीं की, तुमने ये चीज़ अगर तुमने जान ली। तो इस सवाल का जो मकसद है वो असल में ये है कि उन्हें एक वहाँ पे भी उन्हें एक टॉर्मेंट करने के लिए एक हसरत में डालने के लिए ये कलाम ख़ास तौर से उनसे किया जाएगा, और उन्हें बताने के लिए कि तुम आज जिसको चंद दिन की ज़िंदगी कह रहे हो एक रोज़ या इससे भी चंद दिन की, वो दरअसल कितने सालों साल तुम लोग इस बगैरती में और अल्लाह की नाफरमानियों में और उसके हुक्मों को तोड़ने में और नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को छोड़ने में और उनकी खिलाफ वर्जियाँ करने में लगे रहे। तो फिर आगे ज़ाहिर है एंड में हम देखते हैं कि फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहाबा से खिताब सामने एक इब्ने कसीर रहमतुल्लाह के हवाले से मेंशन करना ज़रूरी है। उन्होंने हज़रत इब्ने कसीर रहमतुल्लाह बड़े बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान के, उन्होंने और भी मुहद्दिस भी हैं और बहुत बड़े अल्लाह यानी जलील कदर सल्फ सालिहीन में से हैं। उन्होंने एक वाक़िया अपनी तफसीर इब्ने कसीर में जो लिखा है वो ये है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के सामने खुतबा जब दिया, उन्होंने उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब अहले जन्नत को जन्नत में और अहले जहन्नम को जहन्नम में दाखिल करेंगे तो उस वक्त अल्लाह सुबहाना व ताला अहले जन्नत से पूछेंगे कि तुम ज़मीन पर कितने साल रहे, वो अर्ज़ करेंगे कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा जो तुम्हें मिला, तुमने इसमें बहुत अच्छी तिजारत की, मेरी रहमत, मेरी जो रज़ा, मेरी जन्नत को तुमने इसके बदले जो बहुत नेक अमाल किए, या अगर एक ताजिर थे तो नेक अपने ऑनेस्ट फॉर्म में एथिकल वैल्यूज़ और मॉरल कोड्स बना के उस पर चल के शरीयत की रूह से फॉलो करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को काम किया, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इस जन्नत में रहो। फिर अल्लाह सुबहाना वाली अहले दोजख से पूछेंगे, उनसे सवाल होगा कि तुम दुनिया में कितने साल रहे, वो भी यही जवाब देंगे कि हम तो भाई जैसे पीछे गुजरा था आयत में कि चंद दिन। तो उनसे अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाएंगे कि तुम्हें दुनिया में जो रहने का मौका मिला, तुमने इसमें बहुत बुरी तिजारत की, मेरी आग और नाराज़गी को ख़रीद दिया, अब तुम दायमी तौर पर इसी में पड़े रहो। तो इस हदीस की रूह से जो इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखी है यहाँ पे, तो इन्हीं जो लोग बदबख्तों की बात पीछे चल रही थी, इनके साइंस अल्लाह ने जो जिक्र किए उन, और फिर उनसे क्वेश्चन किया, तो यह हदीस इसके फॉर्म में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नज़र आई। तो ये इब्न कसीर ने इसे कोट किया है। और फिर बिल्कुल लास्ट आयत नंबर 117 117 देखते हैं, तो वह मैं तो मल्ला आखर ला बुरहान लहू भी फ़िनमा हिसाब हो इन रबी इन्फ़ल काफिरून। स्टार्ट किया था अल्लाह ने मोमिनीन से, क़द अफलाहमिन अल्लज़ीन हम भी सलातम ख़ाशून आखिर आयात जो शुरू हुई थी, तो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की थी और उनकी निशानियाँ बयान की थी, और एंड सूरत में अल्लाह ने कहा कि जो ये दुआ मुझसे मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर बिल्कुल 117 से 118 तक अगर हम देखें, तो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से गोया हम सबको सिखाया कि तुम मुझसे इस तरह दुआ मांगो। अब इस दुआ का क्या मतलब है, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बिल्कुल लास्ट आयत, आयत नंबर 118 में दुआ वक़ुर रब्बि अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये बेहतरीन दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई, और उससे पहले ज़ाहिर है जो अल्लाह के अलावा वमैयदुमल्ला आखरा कोई दूसरा इसके अलावा कोई फॉर्म या ज़रिया बनाने की कोशिश करेगा, ला बुरहान लहू भी उसका फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ला युफ्लिहुल काफिरून, इन झुटलाने वालों का तो ज़ाहिर है कोई ठिकाना नहीं होगा। तो एंड में मोमिनीन को नसीहत के लिए कि वक़ुर इनसे ये कहें, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह ने, इनसे बस ये कहें ये दुआ मांगे रब्बे अग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, और उसी पर तवक्कल करें, और वही मोमिनीन की सिफ़ात में से है कि अल्लाह से तवक्कल की रहमत यानी कि रजा और खौफ के दरमियान जो होता है वो ईमान होता है, वो मोमिनीन की सिफत होती है। अल्लाह से तवक्कल भी अल्लाह पे होती है, और तवक्को भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे अमल करते हुए भी डरते रहते हैं और अल्लाह से मांगते रहते हैं कि रब्बे अग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। यहाँ पर आके एक हिस्सा ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह सूरह नूर से स्टार्ट करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।